बीबीसी इंडिया बोल तारीख 20 जून दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। 5 साल से फरार आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को बीजेपी नेताओं की कथित मदद पर राजनीतिक बवाल। मोदी सरकार ने क्यों बचाया विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को। राजनीति में पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी आज कहां खड़ी है। मोदी सरकार और पूर्ववर्ती सरकारों में अंतर क्या है। क्या इस कांड के बाद भी बेदाग छवि का दावा कर पाएगी मोदी सरकार। ललित मोदी कांड का दाग कैसे धोएगी नरेंद्र मोदी सरकार। इतने सारे सवाल, इन्हीं पर आज चर्चा। हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 और 1811-7001 पर। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। मुंबई में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद 84 हो गई है, जबकि 32 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक बस हादसे में कम से कम 14 लोग मारे गए हैं और 22 गंभीर रूप से घायल हैं। बस में कुल 36 लोग सवार थे। नीदरलैंड के दक्षिणपंथी नेता गीर्ट विल्डर्स ने कहा है कि सरकारी टीवी चैनलों पर पैगंबर मोहम्मद के कार्टून वाले राजनीतिक कार्यक्रम के प्रसारण के नाकाम रहने की वजह गलतफहमियां हैं। इससे पहले उन्होंने टीवी चैनल पर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए थे। अंतिम समय में प्रसारण बदल दिया गया था और एक पुराना वीडियो दिखाया गया जिसमें अप्रवासियों से नीदरलैंड को अपना देश न मानने के लिए कहा गया। ये कार्टून पिछले महीने टेक्सस में प्रदर्शित किए गए थे। इस दौरान हुए हमले में सुरक्षा बलों ने 2 हमलावरों को मार गिराया था। पैगंबर मोहम्मद के कार्टूनों का प्रसारण रमजान के महीने के दौरान किए जाने से दुनिया भर में नीदरलैंड के दूतावास हाई अलर्ट पर हैं। ब्रितानी सेना का एक पैराशूट से कूदने वाला सैनिक एयर शो के दौरान पैराशूट न खुलने के बावजूद सही सलामत बच गया। रेड टेबल डिस्प्ले टीम के सदस्य ने उसे बीच हवा में ही पकड़ लिया और नीचे हजारों दर्शक अवाक रह गए। एक चश्मदीद ने कहा, रेड डेविल उड़ान भर रहे थे, पैराशूटिस्ट बाहर निकले और साफ दिख रहा था कि पैराशूट पूरी तरह नहीं खुला था। उसकी टीम का एक सदस्य खुद को उसके पैराशूट में फंसाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे गिरने से बचा ले। जो हो रहा था उसे देखकर सभी अवाक थे। बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा में पुलिस पर सिलसिलेवार ग्रेनेड हमले किए गए हैं। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक बीती रात हुए हमलों में कम से कम 11 पुलिस वाले घायल हुए हैं। ये हमले उन इलाकों में हुए हैं जहां राष्ट्रपति पियरे नकुरुनजीजा के खिलाफ बीते कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। मध्य चीन में एक पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हुनान प्रांत में एक युवती की मौत की जांच से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक अधिकारियों का कहना था कि युवती की मौत कीटनाशक से हुई थी, लेकिन मृतक महिला के परिजनों ने उसके पति पर हत्या के आरोप लगाए हैं। अफगानिस्तान में एक स्थानीय अधिकारी का कहना है कि एक इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने एक बुजुर्ग को अगवा कर उनकी गला रेतकर हत्या कर दी है। गांव के इस बुजुर्ग को पूर्वी प्रांत नानंग रहार से अगवा किया गया था और बाद में उनका शव एक स्कूल के नज़दीक मिला। ईरान में आध्यात्मिक समूह के संस्थापक के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल को मौत की सजा सुनाई गई है। 4 सालों से जेल में बंद मोहम्मद अली ताहेरी को अधिकतर एकांतवास में रखा जाता है। उन पर धरती पर भ्रष्टाचार फैलाने के आरोप हैं। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल। बीबीसी इंडिया बोल।
तो स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम इंडिया बोल में। विषय आप जान चुके हैं, विषय एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि ललित मोदी कांड के बाद भी बेदाग छवि का दावा कर पाएगी सरकार। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं, फोन उठाइए, शामिल हो जाइए इस बहस में। और टेलीफोन नंबर एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 1811-7000 और 1811-7001 पर। मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु जी, सबसे पहली चीज मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि क्या आप इसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दाग मानते हैं भी, डेंट मानते हैं भी या नहीं मानते हैं?
देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट यह कहना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण में किसी भी तकनीकी या वैधानिक यानी टेक्निकल या लीगल परिभाषा से देखें तो क्या भ्रष्टाचार हुआ है ये बता दिया जाए। यदि केवल सुषमा जी के संदर्भ में हम देखें तो एक विदेश में भारतीय महिला एक समय कुछ समय के लिए आप भूल जाएगी उसका पति कौन था
जी।
उसको मदद की गई क्योंकि उसको ऑपरेशन के समय अपने पति की उपस्थिति चाहिए थी और इसके लिए भी क्या हुआ मदद भारत सरकार ने नहीं की, ना हमने कोई पत्र लिखा ना कोई सीधा संवाद किया। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने एक पत्र लिख रखा था ब्रिटेन को कि यदि किसी भी कारण से ललित मोदी को ट्रेवल वीजा दिया गया तो भारत और ब्रिटेन जैसे दुनिया के दो अत्यंत महत्वपूर्ण देश इनके संबंध खराब हो जाएंगे। तो उन्होंने हमसे स्पष्टीकरण मांगा तो हमने कहा नहीं, हम सारे अपराधियों को सबको एक नजरिए से देखते हैं, यदि आपके कानूनों के अनुसार कुछ होता है तो हमारे द्विपक्षीय संबंध प्रभावित नहीं होंगे। इस चीज में कहां पर भ्रष्टाचार है ये मेरी समझ से बाहर है।
अगर ललित मोदी की जगह वो एक आम आदमी होते और इसी तरह की कोई दिक्कत होती तब आउट ऑफ द वे जाकर जिस तरह से सरकार के एक मंत्री, वरिष्ठ मंत्री और मुख्यमंत्री उनके पक्ष में आई, क्या ये संभव है कि अगर एक आम आदमी अगर मदद की गुहार लगाता तो शायद आप तक पहुंची कभी नहीं पाएगा, तब ये मानवीयता की बात कहां से आ गई?
इस संदर्भ में भी शायद लोगों को यह जानकारियां नहीं है, सुषमा स्वराज जी के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने भी ये बात बोली थी कि रात को 2 बजे भी अगर किसी ने ट्वीट किया है, जब यमन में लोग फंसे थे, इराक में लोग फंसे थे, तो मदद पहुंची है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, बर्लिन में एक भारतीय लड़की थी, उसका नाम था अर्घथा दिनकरन, और उसने इनको ट्वीट किया कि साहब हमारा पासपोर्ट भी खो गया है और पैसे भी खो गए। आप समझिए इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर भारतीय दूतावास के एक अधिकारी ने सुषमा जी ने रिएक्ट किया और उन्होंने उनसे संपर्क किया, उनको धन भी उपलब्ध कराया और जो एक ऑल्टरनेटिव वीजा होता है अस्थाई वीजा बाहर आने का वो किया। तो आम आदमियों के साथ भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। मैं भूल रहा हूँ एक शायद लंदन की लड़की थी कोई आकांक्षा शर्मा या क्या नाम था, उनके साथ ऐसे कई उदाहरण है जिन्होंने सुषमा जी को किसी मजबूर परिस्थिति में फंसने के बाद ट्वीट किया और विदेश मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से
मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार के जो मंत्री हैं वो बहुत भाव विह्वल हैं, मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत हैं और आउट ऑफ द वे जाके काम करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत
नहीं। मोहन जी मैं इसमें एक और बात कहता हूं।
जी जी,
इस प्रश्न का उत्तर वहां से प्रारंभ होना चाहिए कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने
ये तो हर सत्ताधारी हर ठीकरा पुरानी सरकारों पर फोड़ देता है।
नहीं नहीं नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि वह पत्र के किन प्रावधानों के तहत लिखा था, यदि विदेश मंत्री ने लिखा था, यदि नीतिगत निर्णय था तो किस कैबिनेट के डिसीजन में हुआ और किन किन देशों को किन किन अपराधियों के लिए लिखा गया। क्या हमने अबू सलेम के मैटर पर पुर्तगाल को लिखा कि हमारे संबंध खराब होंगे? अर्जेंटीना ने क्वात्रोची का रेड कॉर्नर नोटिस खत्म कर दिया, हमने कहा कि संबंध खराब होंगे? स्वीडन ने बोफोर्स के नाम देने से मना किया, हमने कहा संबंध खराब होंगे? इसका मतलब सारे अपराधी एक नजर में नहीं थे, किसी एक देश को चुन लिया, किसी एक व्यक्ति को चुन लिया और अपनी व्यक्तिगत रुचि धारणा के आधार पर कार्रवाई की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी देशों के सभी अपराधियों को एक समान दृष्टि देखती है, न किसी को विशेष, न किसी के प्रति आग्रह, न किसी के प्रति दुराग्रह।
बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार दूसरे कार्यक्रमों को, जो कि यूपीए सरकार कह रही है कि आप हमारे कार्यक्रमों को चुरा लेते हैं और चला रहे हैं, तब तो बीजेपी कहती है कि भाई हमारे अपने कार्यक्रम, और अगर इस तरह की बातें तो यूपीए सरकार से आ जाती हैं। बहरहाल मैं आपको रोक रहा हूं, कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल कर रहा हूं। जी श्रोता हमारे साथ लाइन पर हैं, जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं, सीधे आपके सवाल का जवाब देंगे।
हेलो
जी, हाँ नाम बताएं।
नमस्कार जी, मैं श्रीकांत बोल रहा हूँ बैंगलोर से।
अच्छा श्रीकांत जी बैंगलोर से बोल रहे हैं, स्वागत है कार्यक्रम में। सुधांशु त्रिवेदी दूसरी लाइन पर हैं। इस घटना के सबब क्या है, कोई सवाल दिमाग में उठता है?
सवाल तो ये है सुधांशु जी से, मैं 2-3 बातें पूछना चाहता हूँ। क्या चुप्पी जो है वो स्वीकारिता का द्योतक नहीं है? दूसरी बात ये कि हमारे मोदी साहब को बड़ा श्रूड पॉलिटिशियन माना जाता है, तो जहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, श्रूड होती है, वहाँ दया भावना कोई चीज होती है? मेरे ख्याल से नहीं होती है। और अगर कोई दिखाता है कि दया है, भावना है, तो उसके पीछे भी जरूर आपका कोई स्वार्थ, जरूर आपकी कोई मंशा होती है। और इसके अलावा एक बात तो ये भी है कि जितना दोष इनको है उतना शायद ब्रिटेन को भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो भी चाहे तो डिपोर्ट कर सकती है, उनका पासपोर्ट कैंसिल कर सकती है, और कम से कम आज के दिन तो बता सकती है कि भाई आज जो है शरणार्थी दिवस है, आज हम ऐसे शरणार्थी को नहीं रखेंगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, आज शरणार्थी दिवस है। सुधांशु जी दो बातें इन्होंने बड़ी पते की कहीं, क्या जवाब देंगे?
हाँ, दोनों का मैं उत्तर देता हूँ। पहली बात जो इन्होंने पासपोर्ट की कही कि ब्रिटेन कर सकता था, एक बात मैं तथ्य इनके संज्ञान में ला दूं कि यूपीए सरकार ने पासपोर्ट जब्त कर लिया था दलित मोदी,
और अदालत ने उसको जो है
कोर्ट में गए और उसकी सारी सुनवाई यूपीए सरकार के कार्यकाल में ही समाप्त हो गई। सिर्फ डिसीजन सुनाया गया था और यूपीए सरकार वो मुकदमा हार गई। यानी इसका अर्थ हुआ कि जितने भी तथ्य और साक्ष्य उन्होंने रखे न्यायालय में वह प्रमाणित नहीं करता। दूसरी बात, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि सबका कोई ना कोई स्वार्थ होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, सैयद अली शाह गिलानी की बेटी बीमार है और सऊदी अरब में रह रही है और वो वीजा चाहते थे, वो सैयद अली शाह गिलानी
उसपे बवाल हुआ, उसपे बवाल हुआ।
वो सैयद अली शाह गिलानी जो इंडियन लिखने को तैयार नहीं है, वो सैयद अली शाह गिलानी जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे राजनीतिक विरोधी में से किसी एक ने कहा कि गिलानी को वीजा नहीं देना चाहिए? वो भी सिर्फ किस लिए? बेटी से मिलने के लिए। यहाँ तो जो व्यक्ति बीमार है वो खुद
पीडीपी ने कहा, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गिलानी को इस आधार पर पासपोर्ट दिया जाना चाहिए, वीजा दिया जाना चाहिए। आप ही के समर्थक हैं।
हम कह रहा हूँ इसमें हमारे सहयोगियों से भी हमारा मतभेद है, और मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ क्या कांग्रेस ने एक बार कहा तो गिलानी के लिए एक रूल, हाँ, और नलिनी मोदी क्योंकि दलित मोदी की पत्नी है उनके लिए दूसरा रूल? यही तो मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से लेकर विपक्ष तक इनके अलग अलग देशों में अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग नियम क्यों हो जाते हैं?
बिल्कुल।
हमने गिलानी को भी वीजा दिया
जी,
और ललित मोदी की पत्नी ने मांगा उसको भी हमने सहूलियत दी
जी।
कहाँ हमारे मन में मतभेद है
जी। कार्यक्रम में हमारे साथ सिद्धार्थ वरदराजन शामिल हो गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सिद्धार्थ जी, इस पूरे प्रकरण में आप भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं कि कुछ इसने हिलाया है, कुछ गड़बड़ की है?
देखिए, पार्टी ने गड़बड़ किया ना कि ये अलग बात है, लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं अभी तक सुषमा स्वराज जी के बारे में और वसुंधरा राजे जी के बारे में, इनके रिएक्शन में जो पार्टी का जो स्टैंड रहा है, मैं समझता हूँ कि ये एक उचित ठीक स्टैंड नहीं है। जिस तरह से लोग उम्मीद कर रहे थे कि पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव जीत के आई है वो जरूर अवश्य ठोस से ठोस कदम लेने के लिए तैयार होगा, खास तौर पे जब हलफनामा जो निकला है वसुंधरा राजे का कि भाई एक भगोड़े के लिए आपने वकालत की, तो ऐसे परिस्थिति में ये कहना कि भाई कोई कानूनी और मॉरल मसला नहीं है और आगे जाके देखा जाएगा, और जो लोग सवाल उठा रहे हैं ये लाफेबल है जो सुधांशु त्रिवेदी जी का बयान है, मैं समझता हूँ कि ये एकदम।
सुधांशु जी इस समय लाइन पर हैं और आपकी बात भी सुन रहे हैं।
नहीं, वो अवश्य सुने, कल टीवी पे भी उनसे बहस हो रही थी हमारी। मैं समझता हूँ कि ये अफसोसजनक बात है, मतलब ये संजीदा मामला है जो उठा है, और पार्टी का रवैया जो अभी तक देखने को मिला है मुझे लगता है कि ये नुकसान पहुंचा रहा है बीजेपी को और खास तौर पे प्रधानमंत्री की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहा है।
सुधांशु जी, क्या ये प्रकरण प्रधानमंत्री छवि को, प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, डेंट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये मानेंगे आप?
देखिए, मैं ये बात पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये बताइए कि कोई भी चीज में भ्रष्टाचार तब होता है जब उसमें कुछ नियम के विपरीत गया हो, नंबर दो, कोई क्विड प्रो क्यो लेन देन हुआ हो, और नंबर तीन, कोई वित्तीय विनिमय यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ हो। इन दोनों ही प्रकरणों में मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति कोई भी लीगल या टेक्निकल टर्म्स में बता सके कि साहब ये क्विड प्रो क्यो हुआ, ये लाभ पहुंचाया गया, बदले में यह धन लिया गया। हाँ, वसुंधरा जी के विषय में संवेदनशील माना जा रहा है, उसके संदर्भ में भी किसी को विटनेस बनाना वो तो उनका अधिकार था। एक जो उसमें लाइन लिखी हुई है कि यह भारतीय अधिकारियों के संज्ञान में ना आए, उस विषय में कहा गया है कि अभी तक यह दस्तावेज प्रमाणित नहीं है। अब कुछ प्रोखों की बात करें तो वो तो नेता प्रतिपक्ष थी, तो ये तो राजस्थान में वो नेता प्रतिपक्ष थी, तो राजस्थान की सरकार जो तत्कालीन कांग्रेस थी उससे पूछिए कि भाई वो कौन सा काम सत्ता के नाम से उन्होंने वसुंधरा जी के कहने पर किया था जिसके बदले में वसुंधरा जी ने यह काम किया। कुछ रोके तो तभी होता ना जब आप सत्ता से कुछ लाभ पहुंचाएं, बदले में किसी को से कुछ प्राप्त करें, तो वो राजस्थान की सरकार जवाब दे कि उसने कौन सा काम वसुंधरा जी के कहने पे किया था जिससे कि शायद ललित मोदी को कोई फायदा उन्होंने 2011 में जब वो नेता प्रतिपक्ष को पहुंचाया।
जी, मैं इस बहस को आगे जारी रखूंगा, कार्यक्रम में श्रोता को शामिल कर रहा हूं क्योंकि ये कार्यक्रम श्रोताओं के सवालों का है और आप तो हैं ही कार्यक्रम में। जी, नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। जी, नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
जी नमस्कार सर, मैं इंद्रजीत पानू बात कर रहा हूं पिथौरागढ़ उत्तराखंड से।
पिथौरागढ़ जहां पर आज एक दुर्घटना हुई है।
जी। सर, मेरा सवाल था सुधांशु जी से कि नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि नमक खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अभी जो वाकया हुआ है ललित मोदी जी का, तो उससे हमको लगता है कि उनकी सरकार उद्योगपतियों और धनाढ्य वर्ग के सामने जो है वो कमजोर साबित हो रही है।
उद्योगपतियों और धनाढ्यों के सामने कैसे कमजोर हो सकती है सुधांशु जी मोदी सरकार?
मोहन जी, अभी आपके कार्यक्रम में पिछले प्रश्न में मैंने कहा कि क्या खाया गया और किसने खाया, ये तो कहीं है ही नहीं।
अप्रत्यक्ष रूप से किसी को किसी को लाभ पहुंचाना भी तो एक तरह का भ्रष्टाचार ही है।
यदि ललित मोदी की बीमार पत्नी को सहायता पहुंचाना ललित मोदी को लाभ पहुंचाना है, यदि वह परिभाषा है, चलिए मान लिया। ये बताइए ललित मोदी का भ्रष्टाचार किसके समझ में हुआ था? यूपीए के सरकार ने, अरे यूपीए सरकार के मंत्रियों के कहने पर ललित मोदी ने इक्विटी दी है अपनी।
सुधांशु जी, सारी बात,
संबंध किसके ज्यादा अच्छे हैं? अरे आप मेरे कहने पर शेयर अलॉट कर दे रहे हैं फ्री में, इक्विटी यानी बगैर धन के शेयर अलॉट कर दे रहे हैं,
यानी कि
किसी को टीम अलॉट कर दे रहे हैं, उसका भ्रष्टाचार तो वो आज हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक पत्नी को देने से जिससे कि 10 दिन का ट्रेवल वीजा मिल गया, तो ये बड़ा भारी भ्रष्टाचार हो गया
जी। सिद्धार्थ जी आप इनके सुधांशु जी के तर्क को सुन रहे हैं भाई, सुधांशु जी के जो तर्क है वो पूर्ववर्ती सरकारों की ओर चले जाते हैं।
नहीं देखिए, जो कांग्रेस सरकार रही 10 साल, वो अपने भ्रष्ट कामों की वजह से चुनाव हार के चली गई।
बिल्कुल,
इसमें कोई दो राय नहीं है। और सुधांशु जी को बार बार ये बात दोहराना भी मैं समझता हूँ कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो गया और उचित है कि हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि ललित मोदी जी कौन से ऐसे दूध के धुले हुए इंसान हैं? मतलब ये तो आरोपी हैं, और खुद जो है त्रिवेदी साहब बोल रहे हैं कि भ्रष्ट, इनका जो भ्रष्ट काम था ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, तो ये मानते हैं कि भ्रष्ट इंसान है। तो भ्रष्ट इंसान से मतलब भारतीय जनता पार्टी, ये कैसी पार्टी है कि दो वरिष्ठ नेता का इतना करीब रिश्ता ललित मोदी के साथ, कि एक एक नेता जो है वो सीक्रेटली हलफनामा दे रहे हैं, दूसरी नेता जो है वो किसी भी मतलब एकदम सीक्रेट के साथ अपने मंत्रालय को ना बताते हुए, अपने पार्टी के कॉलीग को ना बताते हुए डायरेक्टली आपने ब्रिटिश सरकार को एक तरह से आदेश दिया कि भाई इस आदमी की मदद कीजिए। तो मतलब कि मतलब बार बार त्रिवेदी जी बोल रहे कि खाना पीना कहाँ हुआ, सवाल उठता है कि क्या उनको ये बात खटकती नहीं है? उनको जो मतलब जो सवाल हर नागरिक पूछ रहा है, हिंदुस्तान का हर शख्स पूछ रहा है कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के पार्टी के दो वरिष्ठ नेता ललित मोदी के इतने करीबी रिश्ते निभा रहे हैं?
सुधांशु जी
मतलब ये इनके गले में बात अटकती नहीं है क्या?
सुधांशु जी
देखिए, यहाँ पे एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, हमको यहाँ ललित मोदी फील नहीं कर रहे हैं, परंतु ललित मोदी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं और वह आरोपी हैं भी, अपराधी नहीं है। उनके आरोप की जांच के लिए हमारी सरकार सतर्क है। वित्त मंत्री महोदय ने कहा है 16 मामलों में उनपे संदेह है, जिसमें 15 में प्रवर्तन निदेशालय या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको नोटिस दे रखा है और उसके अनुसार कार्रवाई अपनी प्रबलता चल रही है। तो इसमें किसी भी प्रकार से उनके प्रति नरमी का कोई भाव हमारे अंदर नहीं है।
बहुत सही, बहुत सही, नरमी
संगत कार्रवाई कर रहे हैं,
बिल्कुल सही।
एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए अगर किसी उसकी पत्नी जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, चलिए एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ मैं कांग्रेस के मित्रों से, कि ये बताइए
यहाँ कोई कांग्रेसी नहीं है, यहाँ कोई कांग्रेसी नहीं है,
आर्थिक अपराधी है, ये बताइए जो टेररिस्ट है अफजल गुरु था, उसके साथ कौन सी सहानुभूति थी जो आपने 7 साल उसको फांसी नहीं थी? और एक कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद, मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, ओपनली उसके लिए सहानुभूति देते, उसके तो कोई परिवार में दीवार भी नहीं।
सुधांशु जी, विषय का परिवर्तन हो रहा है, सुधांशु जी विषय का परिवर्तन हो रहा है।
घनघोर अपराधी जिसको
जी मैं
सजाए आपका कह चुका हूं, जिसको कहे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम है
जी,
और उसके प्रति तो आप ये सहानुभूति दर्शाते हैं। और यहाँ पर परोक्ष रूप में यदि किसी की पत्नी के कारण उसको 10 दिन का ट्रेवल मिल गया, अरे तो साहब तो कितना भारी हमने सहानुभूति दिखा के अपराध कर दिया।
मैं एक सवाल
दोनों बातों की,
सुधांशु जी मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, एक श्रोता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जी, नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं, मुझे मालूम है सुधांशु जी को भी निकाला।
जी जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, सुरनकोट से
जी।
हाँ जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये एक छोटी सी बात पे बवाल खड़ा कर दिया है। यहाँ पर सुषमा स्वराज जी ने कुछ नहीं किया है, उन्होंने एक इंसानी नाते से किसी बीमार को अगर कुछ मिल सकता है तो वो कर रहे हैं। तो जहाँ तक ललित मोदी की बात है तो वो कानूनी कार्रवाई होगी, वो तो कोर्ट फैसला देगा। ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस का मतलब है प्रोपेगंडा करना, कांग्रेस ने हमेशा हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा किया है और लोगों का हनन किया है और ये इनको कोई मुद्दा नहीं है। और देखो ये मामूली सी बात है, इसमें कोई भी आदमी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा हो वो भी यही कहेगा यार ये बीमार है इसको इलाज होने दे, बाद में अगर ये ठीक हो गया बीमार को भी जेल में ठीक करा के तो घर में ला के फिर सजा देते हैं, तो सजा तो मिलेगी नरेंद्र मोदी को। लेकिन ये कौन सी बात है कि एक बीमार मर रहा है तो उसको अस्पताल में ना जाओ उसको इलाज मत कराओ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस और इसके साथ वाली ये हमारा हिंदुस्तान का जो मतलब
जी हम बात समझ गए, बात समझ गए जी जी,
हमारे लिए बहुत बड़ी है जो हमारे हमारे ये है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जैसा तो प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान में आया ही नहीं
जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधांशु जी को कहीं निकलना है, मैं आखिरी टिप्पणी लूंगा सुधांशु जी से।
एक टिप्पणी जो इन्होंने बोला है
जी, वो तो तारीफ कर रहे हैं,
अच्छी बात कही है जी। मैं एक तथ्य याद दिलाना चाहता हूँ,
लेकिन मैं भी आपसे टिप्पणी लूंगा। हाँ
मैं मोहन जी एक तथ्य, अजमल आमिर कसाब जो 26/11 का दोषी था वो भी बीमार हुआ था तो उसका इलाज मुहैया कराया था कि नहीं सरकार ने, बताइए। अजमल आमिर कसाब को तो इलाज मुहैया कराया जा सकता है, मगर ललित मोदी की पत्नी को मरने के लिए छोड़ दिया जाए वो आप, भारत ब्रिटेन के संबंध खराब हो जाएंगे अगर इलाज करने के लिए दे दिया गया। ये ऐसा चित्र और विद्रूप तर्क है, इतना एब्सर्ड लॉजिक है जो
ठीक है
तो
ठीक है ठीक है। मैं सिद्धार्थ वरदराजन के पास भी आऊंगा, मैं एक आपकी आखिरी टिप्पणी ले रहा हूं, मुझे मालूम है आपको निकलना है। भाई अगर आप लोगों के संबंध सरकार के इतने ही अच्छे हैं तो एक मंत्री और मुख्यमंत्री होने के नाते आपका फर्ज ये भी है कि भारत सरकार के लिए ये नहीं कह सकते कि भाई ललित मोदी को भारत आने के लिए समझाते कि भाई यहां पर आइए, वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है उसकी सफाई दीजिए, अपने मामले को साफ कीजिए। भाई जब आप मदद कर सकते तो संबंध तो अच्छे हैं, तो भाई इस दिशा में भी आगे काम कीजिए करते।
मोहन जी आपके प्रश्न में हमारा उत्तर स्वयं निहित है, अगर हम वाकई मदद करने के मनोवृत्ति में होते तो सही बात है। एक साल में जैसे इन्होंने 2G के घोटाले के आरोपियों पे केसेस ढीले कर दिए थे, CWG पे ढीले कर दिए थे, कोयला घोटाले वालों पे ढीले कर दिए थे, कोर्ट ने हस्तक्षेप, कोर्ट ने कहा एग्जीक्यूटिव को दिखाइएगा नहीं,
अरे तो भाई आप उनको समझाइए कि यहां पर आए,
गुम कर दी होती जैसे कोयला घोटाले की हो गई थी, हमने भी उनकी मदद करनी होती। उनका आज तक बाहर रहना इस बात का प्रमाण है कि उनको भारत में ये लग रहा है कि भारत की कानून व्यवस्था, तो आप वर्तमान सरकार के आने के बाद भी उनके विरुद्ध,
तो वही तो मैं कार्रवाई करने जी के जी लिए, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ सुधांशु जी, उनको समझाते कि भाई आप भारत में आ जाइए और अपना मामला सुलझा लीजिए।
देखिए हम अपराधी के साथ कोई निगोसिएशन नहीं करते, आरोपी के साथ,
अच्छा मित्रतापूर्ण बर्ताव कर सकते हैं लेकिन निगोसिएशन नहीं,
विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं और विधि सम्मत कार्रवाई का ये हिस्सा है कि उसके परिवार का कोई व्यक्ति यदि बीमार है तो उसको इलाज या सुविधा मुहैया कराई जाए, ये अभी
जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, मुझे मालूम है आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में कहीं जा रहे हैं और बीच में हमसे बात कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया अपने तथ्यों को रखने के लिए और अपने तर्कों को रखने के लिए। मैं कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल कर रहा हूं और उसके बाद सिद्धार्थ वरदराजन के पास आएंगे जी। नाम बताइए, कहां से बोल रहे हैं?
हेलो
जी,
नमस्कार सर।
नमस्कार, नाम बताइए।
कुलवीर बकर बोल रहा हूं, राजस्थान से।
अच्छा राजस्थान से बोल रहे हैं कुलवीर जी। हाँ बात रखिए अपनी।
जयललिता साहब पर भी 13-14 साल केस चला, वो छूटने के बाद फिर मुख्यमंत्री बन गई। तो क्या सुषमा स्वराज को हम इस्तीफा मंगवा रहे हैं? क्यों मंगवा रहे हैं हम? फिर वसुंधरा राजे से मंगवा रहे हैं? ये अटने वाले तो है नहीं, इनमें इसने कोई बड़ा काम भी नहीं किया है कि उसके नारे लग रहे हैं, कोई हड़ताल कर रहा है, क्या कर रहे हैं?
मतलब आप कह रहे हैं राजनीति है ये सब?
बात ही रहने तो बिल्कुल भ्रष्ट है भारत की। कोई किसी को राउंड बोल रहे हैं, कोई विदेशी तोता बोल रहा है, ये राजनीति थोड़ी होती है। इनके ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है बोलने से,
कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं।
कोई विदेशी तोता तक कह रहा है और जिस पार्टी ने 60 साल राज किया है उसके उपाध्यक्ष को, ये राजनीति थोड़ी है भारत की।
जी जी
धन्यवाद
सिद्धार्थ वरदराजन जी, बहुत सारे तर्क दे के गए हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, कितने तर्क गले उतरते हैं?
एक भी नहीं। सवाल ये उठता है जनाब कि अगर वाकई में ये सरकार ललित मोदी को हिंदुस्तान लौटाना चाहती है और उन पे कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, तो एक साल बीत चुका है जब से दिल्ली के हाईकोर्ट ने उसका पासपोर्ट लौटा दिया, उस फैसले की अपील आपने एक साल में क्यों दर्ज नहीं की सुप्रीम कोर्ट? सुषमा स्वराज ने काफी ट्वीट्स लगाए कि भाई ललित मोदी के साथ मेरी ये बात हुई, वाज के साथ ये बात हुई, बेवन के साथ ये बात हुई, आज तक क्या सुषमा जी बता सकती हैं कि ललित मोदी को हिंदुस्तान वापस लौटाने के लिए वो खुद क्या बोल चुकी हैं?
मैं यही सवाल मैंने सुधांशु जी के सामने रखा था कि भाई जब इतने अच्छे संबंध हैं तो उनको क्यों नहीं समझाते कि भारत आए और मुकदमे का सामना करें।
बिल्कुल, और आपके श्रोताओं को ये भी बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इलाज ललित मोदी जी का नहीं हो रहा था। हाँ, इलाज उनकी पत्नी का हो रहा था एक ऐसे अस्पताल में जो माना जाता है कि एक बहुत अच्छा अस्पताल है। ललित मोदी ने सुषमा जी से कहा और सुषमा जी ने भी इसको ट्वीट किया कि ललित मोदी जी के हस्ताक्षर की जरूरत थी। आज तक जो दस्तावेज ललित मोदी खुद पेश किए हैं पब्लिक के सामने उसमें ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जहां पे ये रिक्वायरमेंट था कि भाई उसको साइन करना पड़ा
जी।
तो ये भी जो ह्यूमैनिटेरियन जो इशू था कि अगर वो नहीं जाते तो ऑपरेशन नहीं हो पाता, श्रीमती मोदी जो है वो मर जाती, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। और इस ये बात इन बातों को इसलिए छाड़ा जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं ललित मोदी पे ये लोग जो सरकार है अपने अपने आप को बचाने के लिए ये ललित मोदी को भी दूध का धुला हुआ इंसान पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
सिद्धार्थ जी, एक श्रोता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी एक टिप्पणी ले लेते हैं फिर कार्यक्रम के समापन की ओर हम बढ़ेंगे। जी नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं? हेलो,
हाँ मैं राणा बोल रहा हूँ गाजियाबाद से।
जी जी, ये भाई ये जो प्रकरण है ललित मोदी का प्रकरण, आपको लगता है कि बीजेपी की छवि पर डेंट लगा है और ये ऐसा डेंट है जो भर नहीं पाएगा?
बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा डेंट है और लगातार सरकार के एक से एक नुमाइंदे आके इस तरह का कुतर्क दे रहे हैं कि मानवता के आधार पे कैंसर के इलाज के लिए इस तरह की अनुमति दी गई। मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि क्या सरकारें भी मानवता के आधार पे एक ऐसे व्यक्ति को जो देश के कानून से भागा हुआ है, देश के कानून का सामना नहीं करना चाहता है, क्या सरकारें भी मानवता के आधार पे काम करेंगी भगोड़े के साथ जो आपके कानून से बच रहा है? आमतौर पे अदालतें कई बार इस तरह के फैसले लेती है कि मानवता के आधार पे इसको छूट मिलनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान का विदेश मंत्री जो एक ऐसे व्यक्ति को मदद कर रहा है मानवता का नाम देकर जो कि देश के कानून से 4 साल से 5 साल से भागा हुआ है, मतलब एक कुतर्क जो है समझ से परे है और मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आता कि सरकार किस दिशा में जा रही है। बार बार इनके लोग आकर कहते हैं कि एक साल से जो है इस सरकार पे कोई करप्शन का दाग नहीं लगा। भाई यूपीए 1 की सरकार में 3.5 साल तक कोई भी दाग नहीं लगा था,
बाद में एक साल
के बाद आप किस तरह का दावा कर रहे हैं?
जी बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सिद्धार्थ वरदराजन जी, आखिरी टिप्पणी के लिए आ रहा हूँ, समय काफी कम है। डेंट लगा या नहीं लगा, और अगर लगा तो कितना खतरनाक, और ये जो हमारे अभी श्रोता कह रहे थे आप इनसे सहमत होंगे मेरे ख्याल से?
नहीं देखिए, डेंट तो लगा है और सरकार अपने आप को अगर बचाना चाहती है, अपने छवि को बचाना चाहती है, तो एक ही रास्ता है, वो ये कि जल्द से जल्द वो ऐलान करे ललित मोदी के खिलाफ कौन सी कार्रवाई लेने वाली है उसके पासपोर्ट कैंसिल करने के लिए।
सरकार तो पूरी तरह से साथ में खड़ी है, चाहे वो वसुंधरा जी हों चाहे सुषमा जी हों।
जी जी बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए सरकार आखिरकार ललित मोदी को बचाने के चक्कर में लगी,
और सबसे
की बातों से यही बात लग रहा है हमको।
और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जो लगातार हर जगह जाके बोलते हैं, इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं।
जी मतलब चार दिन पहले मैंने लेख लिखा कि भाई मोदी साहब को अपना जो
मौन व्रत है
मतलब तोड़ना अब जरूरी है, लेकिन और बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं लेकिन मोदी साहब आज तक जो है बोल नहीं पा रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ वरदराजन जी। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हालांकि आपसे हम विदा ले चुके हैं। सभी उन श्रोताओं का शुक्रिया जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाए, माफी उन श्रोताओं से जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुंबई में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद 84 हो गई है, जबकि 32 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक बस हादसे में कम से कम 14 लोग मारे गए हैं और 22 गंभीर रूप से घायल हैं। नीदरलैंड के दक्षिणपंथी नेता गीर्ट विल्डर्स ने कहा है कि सरकारी टीवी चैनल पर पैगंबर मोहम्मद के कार्टून वाले राजनीतिक कार्यक्रम के प्रसारण के नाकाम रहने की वजह गलतफहमियां हैं। ब्रितानी सेना का एक पैराशूट से कूदने वाला सैनिक एयर शो के दौरान पैराशूट न खुलने के बावजूद सही सलामत बच गया है। बुरुंडू की राजधानी बुजुम्बुरा में पुलिस पर सिलसिलेवार ग्रेनेड हमले किए गए हैं। मध्य चीन में एक पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की इस सभा में बस इतना ही। आज स्टूडियो की कमान संभाल रहे थे देवाशीष। अगले कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मोहनलाल शर्मा को अनुमति दें, नमस्कार।